करुणानियोग के माध्यम से पांच भावों की चर्चा कर रहे हैं। ये जो जीव के पांच असाधारण भाव कहने में आते हैं, हमने देखे थे औदयिक भाव, शौक्षमिक भाव, पारिणामिक भाव, औक्षमिक भाव और शायिक भाव। ये पांच प्रकार के भाव हमने देखे। आप पूछेंगे ये भाव क्यों जानना, बोलो चेतना भी। हाँ, अपने परिणाम है। हाँ, कैसे परिणाम है और इनके इतने 53 प्रकार के भाव जानने की क्या जरूरत थी, ये सवाल है ना, जो आज सुबह गुरुदेव के प्रवचन में आया था। क्या आया था, किसको पद कहा था और किसको अपद कहा था। ये जो स्थाई भाव इसमें से कौन से है, पारिणामिक, वो भी भव्य अभव्य वाले को छोड़ना, जीवत्व पारिणामिक अपना स्थाई भाव है, वो अपना पद है, और बाकी जो सारे वहां तो रागादिक और क्षौक्षणिक लिए, वर्णादिक तो परद्रव्य में चले जाएंगे, ख्याल है ना, रागादिक वो सारे औदयिक आदि में आ जाएंगे और क्षौक्षणिक। ये जो सारे पर्याय रूप भाव है, ये स्थाई भाव नहीं है, वो मेरा पद नहीं है, वो मेरा अपद है। जो अपद है उसको जानना जरूरी है कि नहीं है, क्योंकि वो हम अपने करके उसको पकड़ के बैठे हैं कि यही मेरा स्वरूप है। पहले भी पहले तो शरीर ही मैं हूं ऐसा मानकर बैठे थे, अभी चलो बार बार गुरुदेव ने या आचार्यों ने बताने पर हमने मान लिया कि शरीर मैं नहीं हूं, परंतु ये रागादि भावों की पकड़ नहीं छूट रही, इसलिए बार बार सभी ग्रंथों में इसी की मुख्यता से बार बार ये बात की जाती है। और आप कहते ये रागादि तो हमको सिखा रहे, हम सिखा नहीं रहे, ये भाव रागादि है, इसको पहचानना जरूरी है। तो औदयिक भाव कौन से, क्षौक्षमिक भाव कौन से, ये कहकर ये अपना स्वरूप नहीं है, ये बात यहां चल रही है। नियमसार में भी देखा, वहां तो औक्षमिक शायिक भाव जो है, ये जो धर्म है वितरागता के भाव है, उसको भी वो, क्योंकि वो अपने स्थायी भाव नहीं है, तो उससे भी अपना लक्ष्य हटाया, ख्याल है ना। तो यहां हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, करणानियोगादि प्रयोजन जो है वो वितरागता उत्पन्न कराने का, कहीं वो कर्म की निमित्त से होता है यह कथन करके, कोई निमित्ताधीन बनाने का तो प्रयोजन है ही नहीं है। कोई भी अनुयोग है, चारों ही अनुयोगों में से वीतरागता ही निकलती है, और वो कैसे निकालना ये हमारी बुद्धि का वहां कौशल है। तो ये कर्णानियों की बात हम आगे बढ़ाएंगे। गुरुदेव को कर्णानियों का जबरदस्त अभ्यास था। चेतनाबेन, मैं आपको पूछूंगी, अभी सुबह प्रवचन में आया था इस विश्व में जीव जितने हैं, तो उन्होंने बताई थी कुछ बात, आपको ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई? जीवों की संख्या के बारे में कुछ बात उन्होंने आज बताई थी, नीलेश आप कुछ देख सकेंगे? हाँ, क्या बताया था? हाँ, और देखो इसमें ऐसा है, किसी भी गति के जीव देखिए, नारकी असंख्यात है, देव असंख्यात है, मनुष्य पर्याप्त पर्याप्त मिलकर असंख्यात है, द्विंद्रिय असंख्यात है, तीन्द्रिय असंख्यात है, चतुरिंद्रिय असंख्यात है, संघी पंचेन्द्रिय असंघी पंचेन्द्रिय तीन असंख्यात है। अभी एक इंद्रियों में भी निबोध को अलग रखना, पृथ्वी का एक असंख्यात है, अग्नि का एक असंख्यात है, जल का एक असंख्यात है, वायु का एक असंख्यात है। अब ये सभी को मिलकर भी अभी जो हमने देखे है, निगोध को छोड़कर अन्य एक इंद्रिय और सभी द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी मिलकर भी असंख्यात ही होते हैं, और इन सब से भी निगोध के शरीर असंख्यात होते, ऐसा वहां कहा था, आपको याद होगा। तो वो एक निगोध में तो वो बात आगे, निगोध के शरीर कितने हैं, तो इन सब असंख्यातों से बड़ा असंख्यात निगोध शरीरों का है। हाँ, और ऐसे एक एक शरीर में अनंत जीव, ये इतनी बात उन्होंने सभी बताई, ख्याल है ना? क्योंकि अभी जिसका अभ्यास नहीं है कैसे कह सकता ये सारी बात, ख्याल है ना? ये तो अनंत का भी ज्ञान, कहाँ पड़े हैं जीव, अनंत जीव है ऐसा हम कहते हैं, तो वहां कौन से पर्याय में कहाँ पड़े, ये बात वहां उन्होंने बताई। अभी हम अपना विषय आगे बढ़ाएंगे। सुबह तो हम थोड़ा वो कर्णानियोग के आधार से हम देख रहे थे, वर्ग क्या है, वर्गणा क्या है, स्पर्धक क्या है, क्योंकि उसको समझकर हमको क्षोभ की परिभाषा घटानी थी। हमने देखा कि वर्ग किसे कहना है, तो परमाणु को वर्ग कहना, क्योंकि उसमें विशिष्ट अविभाग पाया जाता है, फल देने की शक्ति को अविभाग कहते हैं, अविभाग प्रतिच्छेद, शक्ति के माप को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। अब ये अविभाग प्रतिच्छेद प्रत्येक परमाणु में, कर्म परमाणु, क्योंकि हम यहाँ कर्म की शक्ति नाप रहे हैं, जो कोई मिथ्यात्व की शक्ति नापेंगे या ज्ञानावरण की नापेंगे, जो कोई कर्म है उसकी शक्ति उसके अपने अपने अविभाग प्रतिच्छेदों में नापेंगे, इसलिए एक एक कर्म परमाणु को वर्ग कहा। अभी जिन जिन कर्म परमाणुओं में समान अविभाग प्रतिच्छेद होगा, उन परमाणुओं के यानी वर्गों के समूह को हम वर्गणा कहते हैं। हमने मान लिया था, फॉर एग्जाम्पल, कल्पना करके समझाने के लिए मान लेते कि 100 वाले सारे परमाणु है, जितने भी कुछ उनको हम कहेंगे ये एक वर्गणा है, जिसमें 101 अविभाग प्रतिच्छेद है उन सभी के समूह को हम कहेंगे ये दूसरी वर्गणा है, 103 वाले हम कहेंगे, 102 वाले, 103 वाले, 104 वाले, ये अलग अलग वर्गणाएं कहलाती हैं। जब अविभाग प्रतिच्छेद दुगुना हो जाता है जिस वर्गणा में, उसके पहले तक की वर्गणा, यानी हमारे एग्जाम्पल में 199 तक की वर्गणाएं, इन सब वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहने में आएगा। ऐसा एक स्पर्धक, दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक, ऐसे अनंत स्पर्धक होते हैं। हम हर समय कर्म बांधते हैं तो उसमें विशिष्ट स्थिति भी पड़ती है, और इतने अनंत कर्म परमाणु बांधते हैं तो अलग अलग परमाणुओं में अलग अलग अनुभाग भी रहता है। अब जो सत्ता में पड़े कर्म है, जब उनकी स्थिति यानी उसका काल समाप्त हो जाएगा तो उदय में आने वाले ही है। एक समय में बंधे हुए उसकी रचना होती है, वो अनेक काल तक उसका उदय चलता है। कल हमने देखा था आभाधा पर छोड़कर उसका उदय काल अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों तक चलता है, परंतु अलग अलग समयों में बांधे हुए जिसकी जिसकी अभी मैच्योरिटी पूरी हुई है, हम बैंक में रखते ना अलग अलग टाइम में रखा हुआ, जिसको जिसका आज जिसका हमें मिलना है वो सब पैसा एक साथ मिलता है, वैसे जिन जिन कर्मों का अलग अलग बांधा है, कोई लाखों वर्ष पहले बांधा है, कोई करोड़ों भव पहले भी बांधा है, ऐसे कर्म जिसका जिसका काल यानी स्थिति पूरी हुई है वो एक साथ हृदय में आएंगे। ये हमने यहाँ नीचे एक लाइन लिखी है, वर्तमान काल का एक निषेक। हर कर्म में ऐसा चलता है, ज्ञानावरण के अलग है, निषेक मिथ्यात्व के अलग है, प्रत्येक कर्म प्रकृति के अपने अपने निषेक कहलाएंगे। तो जितने परमाणु एक साथ एक समय में उदय में आते हैं उसको कहते हैं निषेक। अब इस स्पर्धक किसको कहना, कर्म परमाणुओं के अनुभाग की अपेक्षा जो समूह थे उसको हमने वर्गणा और स्पर्धक कहा था। निषेक किसको कहना, एक साथ उदय में आने वाले, स्थिति समान है उनकी। वर्तमान में जितने कर्म परमाणु एक साथ उदय में आने आएंगे उसको हम कहेंगे ये वर्तमान समय का निषेक है। नहीं, प्रत्येक कर्म का अपना अपना निषेक अलग है। अब दूसरे समय में जो कर्म परमाणु उदय में आएंगे उसको हम कहेंगे ये अगले समय वाला, यानी दूसरा निषेक है, ये सत्ता में पड़े हुए की बात है। तीसरा समय, चौथा समय, पांचवा समय, ये क्रम से उदय में आने वाले जो परमाणु उनके गट्ठे पड़े हैं, लॉट्स है, उसको हम कहेंगे वो निषेक है। नीचे वाला वर्तमान बताया जाता है हमेशा, शास्त्र में ये पद्धति है, वर्तमान समय का जो है वो नीचे बताते हैं और भविष्य के हैं वो ऊपर लिखते हैं। कल हमने जो क्षोभशम की परिभाषा देखी थी, ये 50 पृष्ठ पर देखी थी ना, देखिए अभी हम उसको पढ़ेंगे। अब ये जो निषेक है, निषेक तो क्या बताता है, स्थिति को बताता है। ये एक समय में उदय में आने वाले ये सब परमाणु, अब इसी निषेक में अलग अलग अनुभाग वाले परमाणु हैं। कोई मंद अनुभाग वाले है, कोई तीव्र अनुभाग वाले, कोई देशघाती है, कोई सर्वघाती है। परंतु वो सर्वघाती यदि उसका उदय हो जावे सर्वघाती रूप से तो पूरा घात हो जाए। अब यदि वो सर्वघाती है वो देशघाती रूप से उदय में आवे, सर्वघाती रूप से उदय का अभाव हो जाए तो वो देशघाती रूप से उदय में आते तो देशघाती रूप से उसका फल मिलेगा। जिस रूप से अनुभाग का उदय है उस रूप से उसका फल मिलेगा। भले बांधा हुआ कैसा भी बांधा था हमने, अभी वर्तमान में किस रूप से अनुभाग का उदय है, देखो हमें जो फल मिलता है वो कर्म कब बांधा था, कितने काल के बाद आज उदय में आया है, उससे कुछ लेना देना नहीं। कर्म का जो फल है कितने डिग्री में कितने मात्रा में उसका उदय हो रहा है वो क्या बता रहा है, जीव के भाव को ही तो बता रहा है ना। वो इतना उदय हुआ इसलिए हमको वैसा भाव करना पड़ता है, ये बात नहीं है। परंतु वर्तमान का उदय क्या बताता है कि जीव इतना इतना भाव कर रहा है, उसका उदय होना या जीव उस रूप उस भाव रूप होना, जैसे हमने क्रोध किया तो क्रोध करना ही कहलाएगा कि ये उसमें जुड़ गया है। ऐसा नहीं कि पहला उदय आवे फिर जीव ने देखा हाँ उदय चल रहा है फिर उसमें जुड़ गया, ऐसा नहीं। वो तो कर्म का उदय उसके ज्ञान का विषय नहीं है। हमें यहाँ क्रोध होता है उस पर से हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ क्रोध कर्म का उदय चल रहा है, ख्याल है ना। कर्म का उदय तो उसका फल जो साता असाता आदि का जो चल रहा है उसमें तो हम अनुमान से कहते हैं इसका कौन सा उदय चल रहा है। परंतु कौन से कर्म है, कितनी संख्या में आ रहे उदय में, अभी चार समय के बाद कौन सा उदय में आने वाला है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। वो अवधि ज्ञानी भले कह सकते हैं, केवल ज्ञानी तो जानते ही है, ख्याल है ना। तो हमें यहाँ क्या देखना है कि जो वर्तमान का जो एक निषेक है उसमें अनंत परमाणु होते हैं। अब उसमें कुछ तो ज्यादा अनुभाग वाले हैं, कुछ कम अनुभाग वाले, तो उदय किस रूप होता है उस पर उसका फल निर्भर है। अब हम मति ज्ञानावरण के ऊपर ये परिभाषा घटित कर रहे थे, क्षोभशम के 50 पृष्ठ पर है ना हिंदी में, गुजराती में एक आध दो पृष्ठ आगे पीछे, यहाँ एक पुस्तक है, एक किसी को चाहिए तो ले लेना, पुस्तक एक है यहाँ। हाँ फिर से प्रश्न दोहरा, क्या कहा आपने, नहीं एक समय में साता का उदय होगा या असाता का होगा, साता असाता का उदय अलग अलग। हाँ एक समय में एक ही बनता है। हाँ साता का भी या तो साता बनेगी या असाता बनेगी, उसको प्रतिपक्षी कहते हैं। जैसे अभी वो बंध का सारा विस्तार ही अलग है, बंधने के जो कुछ नियम है ना, कुछ प्रकृतियां ऐसी होती है वो निरंतर सभी की सभी बनती है। जैसे ज्ञानावरण पांचों प्रकृतियां निरंतर बनती है, पहले गुणस्थान से लेकर दसवें तक पांचों के पांचों ज्ञानावरण बनते हैं। मिथ्यात्व दशा में तो मिथ्यात्व बंधेगा ही हर समय, मिथ्यात्व दशा में सोलह के सोलह कषाय बंधेगी, अनंतानुबंधी चार, अप्रत्याख्यान चार वगैरह वगैरह, सोलह चार चौक सोलह, चार कषाय चौकड़ी, ख्याल आते हैं। भय जुगुप्सा भी हमेशा बंधेगी, और नाम कर्म की कितनी है, तेजस है, कारमाण है, स्पर्शादि चार है, निर्माण है, अग्रलोक है, उपघात वगैरह, ये प्रकृतियां तो निरंतर बनती है। अब कोई कोई प्रकृति ऐसा है कि उसको ग्रुप में से कोई बंधेगी, ग्रुप में से कैसे, जैसे वेदनी है साता बंधेगी या असाता बंधेगी, गोत्र है उच्च बंधेगा या नीच बंधेगा, बंधेगा तो सही, हर समय आयु को छोड़कर हर समय सातों ही कर्मों का बंधन निरंतर होता है, निरंतर, और उदय आठों ही कर्मों का चलता है, परंतु बंधने में ये साता में असाता में या तो साता बंधेगी या असाता। वैसे कितने हैं ना, वेद कर्म का बंध है तो तीन वेदों में से कोई एक वेद बंधेगा। अभी शरीर नाम कर्म है तो या तो औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग बंधेगा या वैक्रिक बंधेगा, ऐसे उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है। नहीं, एक ही परिणाम तो एक ही हो रहा है, परंतु कर्म आठों या सात बन रहे हैं, सात या आठ कर्म बन रहे हैं एक ही परिणाम के कारण, ख्याल है ना। अभी उस दिन बात आई थी, जीव तो क्रोध कर रहा है, जब मिथ्या दृष्टि जीव क्रोध करता है तो उसके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन चारों का क्रोध का उदय चल रहा है, वो परिणाम क्रोध का कर रहा है और उसका बंध हो रहा है क्रोध मान माया लोभ, वो भी चार प्रकार के चार यानी चार चौक सोलह का बंध हो रहा है, उदय हो रहा है चार प्रकार के क्रोध, चार चौकड़ी में से अकेले क्रोध का उसका उदय यानी क्रोध के परिणाम हो रहे हैं, और बंध वो चार चौक सोलह का कर रहा है क्रोध और बांध रहा है क्रोध मान माया लोभ सभी। उदय में चार प्रकार के क्रोध, चारों प्रकार के, जब हम कहते हैं अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है तो हम तो जो मुख्य है उसका नाम लेते हैं, जहां अनंतानुबंधी का उदय है वहां सबका उदय है, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजल है, पर कहने की किसका नाम लेते हैं, जो मुख्य है उसका, है ना। जो कोई कुटुंब का मुखिया है उसको आमंत्रण देंगे ना आप आना, तो उसके साथ सब आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसे अप्रत्याख्यान का उदय कहेंगे, अप्रत्याख्यानारण प्रत्याख्यानारण संज्वलन तीनों समझ। ऐसा नहीं है कि मिथ्या दृष्टि है और अकेला संज्वलन, नहीं नहीं हमारा संज्वलन का उदय चल रहा है, ऐसा नहीं होता, चारों का ही उदय होता है, ये तो बात बहुत बार हमने बताई। अब हम विषय आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अपनी सूक्ष्म नहीं समझ में आएगा। अब हम क्या देख रहे थे कि वर्तमान समय में अलग अलग अनेक प्रकार के अनुभव वाले परमाणु हैं, अब उस पर हमको क्षोभक्षम की परिभाषा घटित करनी है, पहले इसे समझेंगे। ये कल भी अपना हुआ है परंतु ये विषय ऐसा है ना कि जल्दी पकड़ में नहीं आता। देखिए 50 पृष्ठ पर क्षोभक्षम की परिभाषा भी मैं पढ़ूंगी। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, हमने देखा था सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक की बात चल रही, प्रकृति तो हमने पहले देखी। देखिए 54 नंबर पृष्ठ पर ये प्रकृतियों की लिस्ट थी, सर्वघाती प्रकृतियां और देशघाती प्रकृतियां, हमने देखा था ये टेबल। अब इसमें से जो जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनके सभी स्पर्धक यानी सभी परमाणु अनुभाग की अपेक्षा हम जो कहते हैं वो कैसे है, सर्वघाती ही है। अब जो जो देशघाती प्रकृतियों की लिस्ट यहां लिखी है उनके स्पर्धक कैसे है, तो उनमें सर्वघाती भी होते हैं देशघाती भी होते हैं। जब मति ज्ञानावरण चित्त ज्ञानावरण ये सारे जो है उनका बंद होता है तो देशघाती सर्वघाती सभी प्रकार के परमाणु का वहां बंद होता है, स्पर्धक बनते हैं। अब वो बंधने के बाद सत्ता में पड़े। अब मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण कैसे है, वो तो उसका उदय हमेशा देशघाती रूप से ही होगा। निबोध का भी जीव क्यों न हो, उसका मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान थोड़ा ना थोड़ा तो प्रकट रहेगा ही, जो मिनिमम ज्ञान कहने में आता है, जिसको लभ्यक्षर या पर्याय, ऐसे दो नाम है उसके, सूक्ष्म निगोध लब्ध्य पर्याप्त का जो जघन्य ज्ञान है, उस जघन्य ज्ञान का नाम है अक्षर का अनंतवा भाग, जिसको हम कहते पर्याय ज्ञान। पर्याय ये उस ज्ञान का नाम है, ये एक समय वाले पर्याय, वो उस पर्याय की बात नहीं, उस ज्ञान का ही नाम पर्याय ज्ञान है। अब उसमें यानी उतना ज्ञान तो जीवों को तो रहेगा ही रहेगा, वो मिनिमम पॉसिबल ज्ञान है, वो भी अगर ढक जावे तो जीव अचेतन हो जावे, ऐसा कभी नहीं होता। तो यहां क्या कहते हैं, ये जो देशघाती प्रकृतियों की लिस्ट है उसमें सर्वघाती स्पर्धक भी पाए जाते हैं और देशघाती स्पर्धक भी पाए जाते हैं। अब हम ये मति ज्ञानावरण पर घटाएंगे, मति ज्ञानावरण में क्या हो रहा है, अभी 50 पृष्ठ पर आते हैं। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, वर्तमानकालीन ही नहीं है, नीचे वाला वर्तमान का जो निषेक है, निषेक यानी उदय रूप जितने परमाणु है अभी वर्तमान में जो उदय हो रहा है उसमें सर्वघाती रूप से किसी स्पर्धक का उदय नहीं है, भले वो पहले सर्वघाती रूप थे परमाणु, उनमें फल कितना था तो सर्वघात करने का उसमें ताकत थी, परंतु अभी जब उदय में आ रहे हैं वो सर्वघाती रूप से नहीं उदय में आ रहे, देशघाती रूप से उदय में आएंगे। यदि सर्वघाती रूप से उदय में आ जाते तो वो मति ज्ञान का भी टोटल नाश हो जाता, जीव के केवल ज्ञान कैसे होता, जड़ जड़ थे जाए, जड़ हो जाता ना, जीव को उतना भी अगर ज्ञान प्रकट नहीं है तो वो जड़ जैसा हो जाता। तो यहां वर्तमान काल में जो अभी परमाणु उदय रूप है उसमें सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है, तो उदय का अभाव है, उसी को हम कहते क्षय, बराबर, क्योंकि वो परमाणु तो वे ही है जो पहले सर्वघाती थे और वो अभी खिरकर निकल जाने वाले हैं, परमाणु तो अभी रहेंगे नहीं क्योंकि उनकी स्थिति पूरी हुई है, उनका जो सर्वघात करने का स्वभाव था वो अभी माइल्ड हो गया, अभी वो देशघाती रूप हो गया। अब ये भविष्य में ऊपर तो सर्वघाती रूप से पड़े हैं, कितने ही परमाणु सर्वघाती भी है कुछ देशघाती भी है, तो यहां के जो सर्वघाती है वो अपनी जगह छोड़कर नीचे नहीं आ सकते, उसको कहते हैं उनका सदवस्था रूप उपशम, है वहीं पर रहना सद अवस्था रूप उपशम, ये उपशम सम्यक वाला उपशम नहीं, वो अलग टाइप का उपशम होता है। तो ये सर्वघाती ऊपर बने रहेंगे भविष्य में, परंतु वर्तमान में नहीं उदय में आ सकते, ये दो बातें हो गई, उदय तो चल ही रहा है ना, तो किस रूप से उदय हो रहा है, तो देखिए यहां लिखो ना भविष्यकालीन उन्नीस स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और तीसरी बात क्या लिखी, वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, यहां जो परमाणुओं के समूह पड़े हैं उनमें देशघाती स्पर्धक रूप से वे उदय में आ रहे, उदय देशघाती स्पर्धकों का है, देशघाती उसी को कहते हैं जो पूरा घात नहीं करते, है ना, अब ये आवरण है, देशघाती का आवरण इतना चल रहा है, तो इतना ज्ञान प्रकट है और इतना आवरण है देशघाती का, अभी देशघाती में बहुत वेरिएशन है, अभी किसी का देशघाती का आवरण थोड़ा होगा तो उसका मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी ज्यादा है, उसका आवरण और थोड़ा है तो ये बहुत, ये तो हम देखते ना, वो तो मुनिराज है उनका कितना ज्ञान है, शोक्षम ज्यादा है उनका, हाँ इसका आवरण कम शोक्षम ज्ञान ज्यादा, ज्ञान का उघाड़ जिसको हम शोक्षम ज्ञान कहते हैं ना, ये ज्ञान का उघाड़ को शोक्षम ज्ञान कहते हैं, एक शौक्षमिक ज्ञान भी कहलाता है। क्यों शौक्षमिक, क्योंकि केवल ज्ञान है वो कैसा है, क्षायिक ज्ञान, वहां तो अभी ये जो जो क्षायिक है ना, अभी ये चार्ट फिर देखना, अभी हमने देखा था 54 पृष्ठ पर, अभी तो हमने वो क्षोभ भाव घटित किए थे। जो जो देशभाती प्रकृतियां हैं उसकी अपेक्षा अगर हम क्षोभ भाव वहां लिखे ना सारे क्षोभिक भाव चार ज्ञान देशघाती तो पहले पड़े, देशघाती स्पर्धक तो पहले से कुछ थे ही थे, अब जो पूर्व में सर्वघाती थे वे भी देशघाती रूप से हो गए। अब यहाँ जो हम प्रकृतियां देखी ना, देखिए चौपन पुष्कर देशघाती प्रकृतियों की जो लिस्ट है, क्षोभ भाव हमको देखने हैं कौन कौन से कर्मों पर घटित हो गए, ये मति ज्ञानावरण, क्षुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण, जिनका प्रकट है कौन कौन सा, मति शुद्ध तो सबका प्रकट है छद्मस्थों का, अवधि ज्ञानावरण जिसको अवधि ज्ञान है जिसको मन परे ज्ञान है उनको हम क्या कहेंगे, ये उनका क्षयोपशमिक ज्ञान है। और हम आपको अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान नहीं है तो हम क्या कहेंगे, वो जो नहीं है ज्ञान नहीं है, हाँ तो ये हमारे अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती का उदय चला। अवधि ज्ञानावरण प्रकृति तो देशघाती है परंतु उसके स्पर्धक अभी सर्वघाती रूप से उदय में आ रहे हैं, इसलिए हमें अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है तो ये हमारा औदयिक अज्ञान कहलाएगा, प्रकट नहीं ना तो ये औदयिक अज्ञान। सबके प्रत्येक प्रकृति के मूल प्रकृति के निषेक जो है कर्म परमाणु है वो अलग अलग ही है, हमें समझाने के लिए 148 वेद किए हैं, ऐसे देखा जाओ तो असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग भेद है कर्मों के, 148 में ही हम थक जाते हैं नाम देखते देखते और सुनते सुनते, तो जितने कर्म होंगे उतने उसके अपने अपने परमाणु अलग अलग है। सुनो अभी ये जो हमने देखे थे चार ज्ञान, अभी जो कूद ज्ञान अज्ञान ने कूद ज्ञान वो भी ये मतिश्रुत अवधि वाले उस पर ही घटाएंगे, उसके भी अपने अपने आवरण अलग है, जैसे मति अज्ञान कहेंगे जिसको मत्य ज्ञान कहते तो मत्य ज्ञानावरण कर्म ऐसा कहेंगे, मति अज्ञान का आवरण करने वाले मति अज्ञान आवरण कर्म, श्रुता ज्ञान यानी श्रुत अज्ञान का आवरण वाला कर्म वो विभंग ज्ञान, विभंग ज्ञानावरण कर्म, ऐसे उसमें भी कर्मों के नाम आते हैं। तो चार ज्ञान और तीन अज्ञान इसमें घटित हुए, नीचे जो तीन नाम लिखे दर्शनावर में तीन नाम लिखे हैं उसके अपने अपने वो तीन दर्शन हमने घटित किए थे क्षोभ्रमिक भाव में, तीन दर्शन ख्याल आते हैं, यानी ये जो चक्षु दर्शन है वो क्षोभ्रमिक भाव है क्योंकि वहां चक्षु दर्शनावरण का क्षोभ्रम पाया जाता है, अचक्षु दर्शन क्या है क्षोभ्रमिक भाव है, अचक्षु दर्शनावरण का क्षोभ्रम पाया जाता है। अवधि दर्शन क्या है, जिसको अवधि ज्ञान है उसको अवधि दर्शन भी है, वो क्या है क्षोभ्रमिक भाव है क्योंकि वहां अवधि दर्शनावरण का क्षोभ्रम पाया जाता है। अब नीचे देखो सम्यक प्रकृति का तो उदय रहता है और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व तो जिसको एक बार सम्यक हुआ है उसकी सत्ता में तीन प्रकृतियां रहती है, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, उसमें क्या होता है उसमें तो तीन अलग अलग है ना,
जैसे ये यहाँ सम्यक प्रकृति का उदय हो रहा है और मिथ्या और समय मिथ्या तो भविष्य में पड़ेगा, एक आवे का उदय आवे के ऊपर उदय में नहीं है परंतु सत्ता में है और उदय में आता है क्या होता है समय प्रकृति को पुटार्थ होकर उदय में आता है, उसका शोषण समय को बना रहता है, सत्ता में पड़ेगा कि कोई समय दृष्टि है अभी वर्तमान में तो कोई क्षय समय दृष्टि नहीं होता है ना, पंचम काल है यहाँ कोई क्षय प्राप्त नहीं करता तो यहाँ कोई क्षोभ्रम तो समय दृष्टि अंदर बंद कर रहे थे, तो अभी क्या पोजिशन होगी किसी की, ये तो अंतर कोड़ा कूड़े प्रमाण तीनों कूड़े पड़े हैं सत्ता, हर समय
हो गया अपना कार्य, आवली के ऊपर ही पड़ा है मिथ्यात्व। कब किस समय में मिथ्यात्व का उदय चालू हो जाए कह नहीं सकते, परिणाम बिगड़ जाए। तो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व ऊपर रहेंगे और मिथ्यात्व का उदय चालू हो गया तो मिथ्यात्व गुण स्थान में चला जाएगा जी। जिसका सम्यक मिथ्यात्व का उदय होता है तो मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ऊपर पड़ी रहती है, और सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो जाए तो तीसरे गुणस्थान में आता है जी। इसे जिसका उदय है उस गुणस्थान में चला जाता है। उदय है यानी जीव वैसा भाव करता है। यहां तो कर्णालयोग में हम निमित्त की ओर से कथन करते हैं, पर ऐसा नहीं समझना क्या करे बिचारा, इतना सम्यक तो प्राप्त किया अभी मिथ्यात्व का उदय आया बिचारा चला गया। बिचारा कुछ नहीं होता मिथ्यात्व का भी स्वयं वो कार्य करता है तो जाता है। ये संज्वलन की बात जो है ना चारित्र में, ये सराग चारित्र संज्वलन का उदय है, वो तो देशघाती प्रकृति उसमें भी लगाना। नीचे जो हमने दानादि पांच लिखे हैं वहां भी उसका क्षोभषम भाव घटित होता है। इस तरह से हमने ये क्षोभषम भाव इसमें घटित किए। अब थोड़ी इसी पर इसी चार्ट के द्वारा हम क्षायिक भाव होते हैं तब क्या होता है उसको देखिए। क्षायिक भाव है अभी क्षायिक ज्ञान केवल ज्ञान होता है तो ये चार्ट की ओर देखकर मुझे बताना, जब केवल ज्ञान होता है तो कौन से कर्म का क्षय हो जाता है? ये सर्वघाती देशघाती है ना, देखो यानी ऐसा होना चाहिए ना, केवल ज्ञानावरण का क्षय हो गया और केवल ज्ञान हो गया। आप आ कहते हैं हाँ है ना, केवल ज्ञान एक रहेगा तो उस समय कौन कौन से ज्ञानावरणों का क्षय होना चाहिए?
पांचों
नक्की, ऐसा नहीं होगा ना कि मति ज्ञानावरण अभी रह गया, केवल ज्ञानावरण का अभाव हो गया इसलिए केवल ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। क्षायिक भाव में देशघाती सर्वघाती जितनी प्रकृतियां उस मूल प्रकृति के अंदर उन सभी का क्षय होने पर क्षायिक ज्ञान या जो कुछ हम देख रहे हैं वो होगा। यानी जब केवल ज्ञान होता है तो अकेले केवल ज्ञानावरण का अभाव नहीं होता है, ये पांचों ही ज्ञानावरण का क्षय हो जाता है। बारहवें गुणस्थान के अंत में वो मति शुद्ध ज्ञान है, कल बात आई थी ना कहां गए भाई साहब, बारहवें गुणस्थान के अंत तक मति और शुद्ध ज्ञान है, तेरहवें गुणस्थान के पहले समय में केवल ज्ञान है, तो इसमें दो प्रकार से कथन आता है। तो नाश कब हुआ मति शुद्ध ज्ञान का? बारहवें में वो उत्पाद रूप है, तेरहवें में है नहीं, तो इसमें द्रव्यार्थिक नय के कथन में कहेंगे वो बारहवें में अंत कर दिया। पर्यायार्थिक यानी एक्चुअल पर्याय कब हुई, व्यय रूप पर्याय कब हुई, जब अगली समय पर्याय उत्पाद रूप हुई। अंधकार का नाश कब हुआ? जब प्रकाश का उत्पाद हुआ तब उसको हम कहेंगे उसका व्यय हुआ। कल जो बात हो रही थी ना नवे गुणस्थान के अंत में, वो पहले उसको नवे गुणस्थान में ही व्यय कर देता है सुर लोक का, तो वहां तो बादर लोक है नवे में, अंत समय तक उसका उदय है। दसवें में सूक्ष्म लोक का उदय है, यानी वो पहले वाला नहीं है, दूसरे का उत्पाद होना और पहले का नहीं होना एक समय में। देखो ये जब केवल ज्ञान यानी क्षायिक ज्ञान होता है तो ये पांचों ही ज्ञानावरणों का क्षय पाया जाता है। अब जब केवल दर्शन यानी क्षायिक दर्शन होगा तो हाँ कितनों का क्षय होगा, कौन से तीन? और केवल दर्शनावरण नवे नौ, परंतु हम क्षय की बात जब कर रहे हैं ना, क्षय का कार्य कब किया है? श्रेणी में बराबर है। एक्चुअली अभी ये बात अपनी हुई नहीं है, स्त्यान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, इसका तो बंध तो दूसरे ही गुणस्थान तक होता है, उदय छठे तक होता है, फिर भी सत्ता में पड़ी रहती है प्रकृतियां। और जब जीव श्रेणी चढ़ता है शबक श्रेणी में नवे गुणस्थान में इनका क्षय हो जाता है ये तीन का, और जब और ऊपर चढ़ेगा तो बारहवें के उपांत, उपांत यानी लास्ट बटवन, अंत से दूसरे समय में निद्रा प्रचला का क्षय हो जाता है बारहवें के, और फिर वो जो चार रह गई है उसका अंतिम समय में उसका क्षय हो जाता है। एक क्षय की बात अलग है और उसका प्रोसेस भी बहुत लंबा चौड़ा है, हमें उसकी बात नहीं है, परंतु इनमें से कोई प्रकृति नहीं रहेगी तब तक केवल दर्शन हो जाएगा, ख्याल है ना, ख्याल है। अब मोहनीय में दर्शन, मोहनीय में क्षायिक सम्यक तो कब कहेंगे, देखो ये मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तीनों में से कौन सी रह जाएगी तो क्षायिक रहेगा, तो तीनों जाना चाहिए ना, और इसके साथ साथ अनंतानुबंधी, उसके पहले वो समाप्त हो जाता है, तो अनंतानुबंधी और ये तीन, इनका क्षय होने पर जीव क्षायिक समय दृष्टि होता है, यानी क्षायिक समय को प्राप्त होता है। अब क्षायिक चरित्र कब कहलाएगा, अनंतानुबंधी तो सम्यक्त्व के साथ हुआ ना, हाँ, ये बाकी की जो 21 प्रकृतियां हैं उनका पूर्ण क्षय होने पर उसको हम क्षायिक चरित्र कहेंगे, बारहवें में कहेंगे। वैसे तो क्षायिक भाव में हमने तो क्षपक श्रेणी में उसको कहना प्रारंभ किया, क्योंकि आठवें गुणस्थान में कोई क्षय का कार्य नहीं होता है, फिर भी वो अभी उसकी तैयारी चालू हो गई ना, तो हम कहेंगे ये इसके यहाँ क्षायिक भाव है। कल हमने देखा था क्षपक श्रेणी में ही आठवें गुणस्थान से ही हम उसको क्षायिक चरित्र कहते हैं किसी अपेक्षा से। अब ये अंतराय के जो है दान लाभ भोग वगैरह, इन सभी का क्षय होने पर क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग उपभोग और क्षायिक भी प्रकट हो जाता है। तो इस चार के द्वारा हम क्षयोपशमिक भाव भी देख सकते हैं और क्षायिक भाव भी देख सकते हैं। कौन से क्षयोपशमिक भाव में भी, उसमें भी सर्वघाती देशघाती होते हैं ना, उसके उसमें सर्व देशघाती प्रकृति है, उसके स्पर्धक तो अधिक ज्यादा अनुभव वाले और कम अनुभव वाले, इस तरह से उसमें घटित। अनंत वीर्य प्रकट होता है। देखो दान यानी दान लेना, दान देना ये बात मत समझना, वो तो उदाहरण के तौर पर बताया जाता है कि हम दान दे रहे थे और उसमें अंतराय आना, वो तो समझा। दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य ये जीव के गुण है, अपने आप को ही अनंत सुख का दान देना है, उसी का भोग भोगना है, उसी का बारंबार भोग करना है, उसी को अपने को लाभ होना ये कहलाता है। और वो वीर्य यानी वो जो पुरुषार्थ है, वो जो उसने प्रकट करने की उसके बल है उसका, उसको वीर्य कहेंगे। हाँ, बारहवें गुणस्थान के अंत, देखिए दसवें के अंत तक सूक्ष्म लोभ है, तो हम कहेंगे वहां उसको मोहिनी का क्षय हो गया पूर्ण। बारहवें में मोहिनी बिल्कुल नहीं, परंतु बारहवें में ज्ञानावरण का भी उदय चल रहा है, दर्शनावरण का भी उदय चल रहा है, अंतराय का भी उदय चल रहा है, अन्य अघाती तो है ही है। अब बारहवें में इन सबका क्षय हो जाता है, बारहवें के अंत में कहो या तेरहवें के पहले समय, जो कथन पद्धति वैसे, यानी तेरहवें में ये अभी नहीं रहेगी, तो क्षायिक भाव सभी प्रकट हो जाते हैं तेरहवें गुणस्थान में, अरिहंत अवस्था में क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र और ये पांच क्षायिक लब्धि सब मिलकर नौ क्षायिक लब्धि होती है। हाँ, क्षायिक क्षयोपशमिक सम्यक्त्व ये 18 क्षयोपशमिक भावों में से एक भाव है। क्षयोपशमिक भाव हमने 18 देखे हैं, मति ज्ञान भी क्षयोपशमिक भाव है, शुद्ध ज्ञान भी क्षयोपशमिक भाव है ना, ये सारे भावों में इनमें से एक क्षयोपशमिक सम्यक्त्व नाम का भी एक भाव है, जो श्रद्धा गुण पर घटाया है, ख्याल में आता है ना। हाँ, आपका प्रश्न है दर्शन मोहिनी का क्षय कौन से गुणस्थान में हो सकता है या प्रारंभ होता है, ऐसा कहें ना, चौथा पांचवा छठा सातवा, छठा हो या सातवा हो, हम क्या समझते हैं सातवें में तो अंतरंग मिलीन है क्या करेगा कार्य, या छठे में तो शुभोपयोग है कैसे होगा, ये तो कर्णानियोग तो तीन करण परिणाम जानता है, उसमें शुद्धोपयोग शुभोपयोग की बात नहीं होती। अंतरंग की विशुद्धि बढ़ना, जिसको ये तीन करण कहते ना कलम में, नहीं कहा अधक करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण वाले जो तीन करण परिणाम होते हैं, वो बिल्कुल अंतरंग में मग्नता है उस समय। परंतु वहां जो तीन करण परिणाम होते हैं जब जब, तब वो उसकी विशुद्धि बढ़ती है और उसका जो कार्य विशिष्ट होता है, विशिष्ट होता है क्यों, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, वो अपना भी विषय नहीं है। जिसको रुचि है तो जरूर पढ़ना, वो लब्धिसार शपनासार में वो बातें आती है। अभी और कोई प्रश्न है कि 5 मिनट है? हाँ हाँ जरा 1 मिनट। हाँ बारहवें के अंत तक उपसर्ग रह सकता है। आपका प्रश्न ऐसा है, किसी मुनिराज पर उपसर्ग हो रहा है और वो श्रेणी में आरूढ़ है, तो उनका उपसर्ग 13वें तक रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसा प्रश्न है आपको? बारहवें के अंत तक रह सकता है, क्योंकि वो काल इतना अल्प है ना। हमने देखा था छठे गुणस्थान का जितना काल है, उससे भी छोटा काल पूरा श्रेणी का है। उपशम श्रेणी चढ़कर फिर वापस छठे में आ गए, उससे भी छठे का काल बड़ा है, अंतर्मुख। अभी उसको अपने सेकंडों में और मिनटों में मत गिनना, बड़ा अंतर्मुख छोटा अंतर्मुख इस तरह से उसको समझना, यथा योग्य है। हाँ बोलो। पौना सेकंड ऐसा ही है, सेकंडों का भी बहुत छोटा भाग है, अब उससे भी छोटा भाग श्रेणी का है। ये जो 11वें गुणस्थान का काल है, वो जो हम देखते हैं ना एक श्वास में 8-10 बार, श्वास का 18वां भाग जो है उससे दुगुना काल 11वें गुणस्थान का है, वो कितना छोटा होगा। अभी उससे थोड़े थोड़े बड़े हैं अन्य गुणस्थान, फिर भी वो छठे का काल उतना होता है, तो ये सेकंडों का भी कुछ हिस्सा रहता है, इतना ही छोटा रहता है। हाँ इतने छोटे काल में पूरी श्रेणी चढ़, क्योंकि उसमें असंख्यात समय है। और कोई प्रश्न है? बंद की बात की मैंने और उदय की भी बात वैसी समझना। हाँ देखो देखो, आप ऐसा कह रही है, आप तो साता और असाता का उदय तो संयोग में लगा रहे हैं, साता असाता संयोग में है ही नहीं, फिर भी उपचार से हम संयोगों की अपेक्षा उसका कथन करते हैं। संयोगों में जीव की सुख बुद्धि होना, ये साता वेदनीय का कार्य, और वो भी मोहनी के प्रेजेंस में। जिसको मोहनी ही नहीं है उसको साता क्या और असाता क्या, जिसको मोह है ही नहीं है उसको संयोग अच्छा और बुरा लगेगा क्या? कौन सा परद्रव्य अच्छा है और कौन सा बुरा है? पुद्गल द्रव्य में 2 प्रकार होंगे ना, अच्छे पुद्गल और बुरे पुद्गल। हाँ बेन, पुद्गल द्रव्य में 2 पद्धति है, अच्छा पुद्गल बुरा पुद्गल नहीं। शरीर में तो है ना, अच्छा शरीर बुरा शरीर, क्यों? गोरा होना अच्छा है, ये तो हमने मान रखा है, ध्यान है ना। तो जो प्राप्त संयोग है, अब ये पंखा साता वेदनी के उदय से आता है कि असाता के उदय से आता है?
जिसको अच्छा लगता है।
पंखा किसके उदय से आता है? पंखा परमाणु की जो रचना है वो स्वयं अपने कारण से वहां पर होती है। अब उस प्राप्त संयोगों में जो जीव उसको हाँ अच्छा लग रहा है, चलो बहुत गर्मी हो रही पंखा लगाया अच्छा हुआ, तो उसने उस संयोगों में मोह के उदय के कारण अच्छापना मान लिया है, वो उसका साता का उदय कहलाए। और जो उसमें वो बुरापने की कल्पना करता है, अरे बहुत सर्दी हुई है काय को ये सारे लोग पंखा लगाते हैं, हमको सहन नहीं होता, तो उसने उसके लिए असाता। तो एट अ टाइम वो सुख या दुख एक तो मानेगा ना, दोनों एक समय कैसे मानेगा वो, ख्याल है ना। ये तो स्थूल कथन होता है, उपसर्ग आया उसके असाता का उदय है, ऐसा हम कहेंगे? अभी वो तो कथन अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग लेवल पर होता है ना, एक सामान्य कथन होता है। आपका प्रश्न है, ये जो अघाती कर्म है उसमें जीव विपाक की भी प्रकृति और पुद्गल विपाक की भी है, क्षेत्र विपाक की भी है और भव विपाक की भी है, तो ये जीव विपाकी क्यों कहते हैं? क्योंकि जीव के जो सुख दुख, सच्चा सुख वाली बात नहीं, हर्ष विषाद के परिणाम, उसमें इसका निमित्तपना बनता है, इसलिए उसको जीव विपाकी कहने में आता है। और बाकी नाम कर्मों की इतनी सारी प्रकृतियां हैं, वो पुद्गल विपाकी कहेंगे, क्योंकि वो शरीर में उसका ना, इसमें पुद्गल विपाकी, साता असाता पुद्गल विपाकी नहीं। संयोग मिलते हैं, परंतु वो तो बहुत स्थूल उपचार से कहने में आते कि इसको ये संयोग मिले। समय तो हो चुका है। लो जिनवानी माता की जय। हाँ।